राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। श्री श्री गौर निताय पांचशील केंद्र के और दामोदर देश के हंस गोकुल के संग में जुड़े हुए भक्तगण सविता मनीषा दी और फेसबुक के ऊपर जो भाग्यशाली प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के इस शाम के सत्संग में भाग लेते हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद, जो मुक्ति का स्कंद है, जिसमें विशेष रूप से संसार के दुख ताप संताप से मुक्त कैसे हुआ जाए, तो पहले तो 5 अध्यायों में भागवत धर्म है, 4 अध्यायों में भागवत धर्म में नव योगेंद्रों का उपदेश है, और जिससे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव नारद जी से ये दिव्य उपदेश भागवत धर्म का सुन के संसार से मुक्त होके भगवत निरंतर भगवत सेवा में तलीन होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फिर 24 इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इस उद्धव गीता के रूप में सबसे बड़ा भागवत का ये उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नंबर का बड़े से बड़ा उपदेश है, लंबा, 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए। प्रकृति सारी 24 तत्वों की है, उनसे मुक्त होने का जो है उपदेश दिया जा रहा है उद्धव को। इसके बाद और बहुत ये लंबा अध्याय चलता है, अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जाते हैं, उसका वर्णन है। तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया है, अपने आप को उनके शिष्य के रूप में समर्पण किया है और अपने आप को माया से मैं और मेरे में मुग्ध समझ के भगवान से मुक्ति के लिए वृत्ति के साथ बिना किसी दुख तकलीफ संताप से भ्रमण करते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार वो इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के स्वधाम जाने के बाद कैसे वृत्ति से रहे। तो भगवान ने उनको कहा कि जो भगवान ने कहा कि मानव सबसे मुझे प्रिय है, जीव तो अनंत हैं, और मैं यहां तो सिर्फ इस श्लोक में कहा है कि एक पांव वाले, दो पांव वाले, चार पांव वाले, लेकिन इन सब में मानव मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसको जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का अगर वो सदुपयोग कर ले और अपने चारों ओर वातावरण के ऊपर अच्छी तरह से दृष्टि डाले और उनकी वृत्ति से, उनके व्यवहार से अगर वो शिक्षा ग्रहण करे, जो दूसरों को दुख देता है उस चीज से अपने आप को बचा ले, और जो सुख देने वाली चीजें हैं उनको स्वीकार कर ले, इस प्रकार से वो विवेक से और अच्छी तरह से बुद्धि से ये जो सीख ले, तो वो अपना स्वयं गुरु के रूप में शिक्षा दे के सद्मार्ग के ऊपर चल सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि गुरु नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, उसके बगैर भगवान की सेवा में साक्षात सानिध्य प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हमेशा दीक्षा के बाद भी अपने चारों ओर के वातावरण से अच्छी तरह से अवगत, इसका मतलब उसकी जानकारी रखना और उससे प्रेरणा लेते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, जिसमें महाराज यदु, यदु एक राजा है, ये यदु वंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, और ये महाराज यदु भगवान दत्तात्रेय जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, विष्णु का अंश अवतार हैं, और अवधूत महात्मा के रूप में इन्होंने प्रहलाद को भी शिक्षा दी है, अलर्क को भी शिक्षा दी है, हय को भी शिक्षा दी है, और यहाँ यदु महाराज को भी उपदेश दे रहे हैं। तो दत्तात्रेय का अभी हमारे तो भारतवर्ष में प्रायः जितने सन्यासी हैं वो दत्तात्रेय के अनुयायी हैं। तो दत्तात्रेय का अपना एक विशेष उपदेश है वृत्ति का त्याग का। तो दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत के, अवधूत का मतलब है चार वर्ण आश्रम के विभाजन के नियमों से ऊपर। हम नित्यानंद को अवधूत कहते हैं, अवधूत शिरोमणि, अवधूतों में सबसे शिरोमणि है नित्यानंद। इसका मतलब है संसार के नियमों से ऊपर अपने आप भगवत प्रेम में इतना उन्मत्त है। जैसे सुखदेव महाराज भी विचरण कर रहे थे तो अवधूत की तरह विचरण कर रहे थे, दिशाएं ही केवल वस्त्र थे, इसका मतलब निर्वस्त्र। अब 16 साल के नौजवान थे लेकिन उसको तो लोग समझ रहे थे ये पागल है, लड़कियां और बच्चे पागल समझ रहे थे, लेकिन महाराज उठ के उनका स्वागत करने लगे और ऋषि सब उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तो ऐसे अवधूत की स्थिति जो है विदुर, जब विदुर राज धृतराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ के विश्व का नीति गए, विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध है जो धर्मराज का अवतार था, वो जब छोड़ के निकले वहां तो अवधूत की तरह निकले कि कोई पहचान है नहीं कि मैं हस्तिनापुर का राजकुल से जुड़ा हुआ मंत्रिमंडल का आदमी, वो सामान्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल अवधूत की तरह विचरण करने लगे। तो साधु का अवधूत की तरह पड़े हुए नव युवक बुद्धिमान दक्ष और सब कुछ करने में योग्य और बड़े आनंद में ऐसे बिना कुछ किए, बिना कोई क्रिया किए, धर्म अर्थ काम उसके लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहे थे, उसको यदु महाराज ने जब देखा तो आश्चर्य लगा। और यदु महाराज की दो विशेषताएं कही है कि ब्राह्मणाय है, वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, और बहुत बड़े मेधावी है, बड़े बुद्धिमान है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से ये कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ, ये कोई ऊंच कोटि का महात्मा है, इसलिए उनको प्रार्थना किया। और उसने भी यदु महाराज को योग्य समझा, उसमें योग्यता को देखी, उसके निम्रता को देखी कि राजा होकर एक रास्ते में पड़े हुए पागल जैसे व्यक्ति के प्रति इतना आदर से पूछ रहा है तो ये उपदेश लेने के योग्य है। और तब अवधूत दत्तात्रेय ने कहा कि राजन तुम सुनो, मैंने मेरे चारों ओर ये जो गुरुजन है उनसे शिक्षा ली है। कल हमने ये श्लोक पढ़े थे 33, 34 और 35 जिसमें 24 गुरुओं का नाम है। पृथ्वी वायु आकाश, इसका मतलब एक पृथ्वी से शिक्षा ली, एक वायु से शिक्षा ली, एक आकाश से शिक्षा ली, आपो मतलब जल से शिक्षा ली, अग्नि से शिक्षा ली, चंद्रमा से शिक्षा ली, रवि सूर्य से शिक्षा ली, कपो तो कबूतर से शिक्षा ली, अजगर एक अजगर पड़ा था उससे शिक्षा ली, सिंधु एक सागर से शिक्षा ली, पतंगो ये पतंग से शिक्षा ली जो पतंग उड़ के आग में जलता है, और मधुकृत इसका मतलब मक्खी, मधुमक्खी जो माखी कठी करती है उससे शिक्षा ली, गज एक हाथी से शिक्षा लिया, और मधुहा और मधुमक्खी की कठी हुई मधु को जो निकाल के ले जाता है उस माखी निकालने वाले को, मधु निकालने वाले को, शहद निकालने वाले से शिक्षा ली, हरिणों एक हिरण से शिक्षा ली, मीन एक मछली से शिक्षा ली, पिंगला एक वैशा से शिक्षा ली, कुरुरवो एक कुरुर नाम के पक्षी से शिक्षा ली, अर्भक एक छोटा बालक है उससे शिक्षा ली, कुमारी एक कुमारी का मतलब है लड़की जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है उससे मैंने शिक्षा ली, शरकृत सर कहते हैं बाण को, बाण बनाने वाला जो बाण बनाने वाला कारीगर है वो कितना ध्यान से बाण बना रहा था उससे मैंने शिक्षा ली, और सर्प और मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली और सर्प से शिक्षा ली। सर्प कहते हैं जो तेज चलता है, सर्प का ना सांप। और उसके बाद मैंने शिक्षा ली है, इसके बाद है सर्प के बाद कुमारी ही सरकृत सर्प उर्ण नाभि ही। उर्ण नाभि कहते हैं जो ये जाला बनाता है ना स्पाइडर, स्पाइडर को क्या कहते हैं, जाल जो बुनता है, मकड़ी से शिक्षा ली। और सुपेशकृत ये जो पीले रंग का एक छोटा सा जीव होता है जो काटता है तो सारा हाथ, तितैया कहते हैं मेरे ख्याल में, जो मिट्टी का एक ऐसा घर बनाती है, उसके अंदर रहती है, बाहर निकलती है, किसी को काट लेती है, तो उसको वास्प कहते हैं, तितैया, उससे शिक्षा ली। और मैंने किससे शिक्षा ली, ओरण नाभि भी, इसका मतलब वो क्या स्पाइडर को क्या बोला अभी, मकड़ी के जाले से। और सुपेशकृत इसका मतलब क्या कह रहे हैं इसको, तितैया, एते मे गुरवः, ये सब मेरे गुरु हैं, राजन हे महाराज। अब देखो यदु को ये संबोधन कर रहा है, हे महाराज यदु, चतुवंशतई, ये 24 मेरे गुरु हैं, आश्रितः, मैंने इनका शरण लिया है, शिक्षा, मैंने इनसे शिक्षा ली है। बोला कैसे शिक्षा ली है, इन्होंने प्रवचन किया था? नहीं, वृत्ति भी मतलब इनका आचरण कैसे है, इनका व्यवहार कैसे है, ये क्या करते हैं, उनसे मैंने अपनी बुद्धि से शिक्षा ली है। तो ये जो 24 गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते में इनको प्रणाम करना है और इनको इनकी पूजा करनी है, नहीं, और न कि ये गुरु कोई उपदेश देंगे, लेकिन इन सब से, इनके वृत्ति से, व्यवहार से, इनके आचरण से, और ये जो करते हैं उनसे क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, उससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। एतेषां अन्विक्षित्तम, मैंने इनसे अच्छी तरह से शिक्षा ली है, इह इस जीवन में, आत्मनः अपने विषय में मैं इन सब से शिक्षा ली है, मैंने इनका शरण लिया है। तो अब इसके बाद यदु जी कह रहे हैं, यतो यद अनो शिक्षामि यथावा नहोषात्मजा तत् यथा पुरुष व्याग्रह निबोध कथ्यामिते। यतो, जिस प्रकार, यद अनुशिक्षामि, जैसे मैं इनसे शिक्षा ग्रहण की है, इनके व्यवहार से मैंने जो सीखा है, यथावा, जिस प्रकार, नहुष आत्मज, आपका कुल बड़ा बड़ा है, आप उत्तम नहुष के कुल में हो, नहुष वो है जो अपने पुण्य से स्वर्ग में इंद्र के पद को प्राप्त कर सका था, ऐसे नहुष के वंशज महाराज यदु, तथा पुरुष व्याघ्र, और दूसरा आप बहुत बड़े मानव में शेर के समान हैं। इसका मतलब जैसे अर्जुन को भगवान भी ऐसे ही व्याघ्र कह के वो संबोधन करते हैं, इसका मतलब वीर पुरुष हैं, आप योग्य हैं। निबोध कथ्यामि, तुम सुनो, मैं तुमको सुनाता हूं कि मैंने हर एक से क्या क्या शिक्षा ली है। तो अब अवधूत महाराज यदु को प्रवचन करते हुए पहले पृथ्वी से क्या शिक्षा ली है इसका वर्णन कर रहे हैं। भूत ही आक्रमया
माणोपि धीरो दैव वसानुगही तद विद्वान न चले न मार्गात अनविक्षिक्तम क्षितिर्वर्तम व्रतम।
इसमें धरती के लिए शब्द क्षति, अनविक्षिक्षम, मैंने शिक्षा ग्रहण की है, किससे, धरती से, इस क्षति से, जिसको सब लोग क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन ये धीरजवान सहनशील है, इससे मैंने क्षति से मैंने क्षमा और सहनशीलता, जो है ये शिक्षा ली है, ये जो व्रत है इसका, इसका ये व्रत है, हमेशा सहनशील रहती है, इसमें मैंने शिक्षा ली है। तो आगे क्या लिखा है ऊपर, क्या क्या सहन करती है? भूत ही, भूत ही का मतलब प्राणी, जिनको पांच भूतों का शरीर है इसका मतलब प्राणी। आक्रमण करना मतलब किसी के ऊपर कैसा भी दोष आरोपण करे, अथवा उसको संकट दे, अथवा परेशान कराए, फिर भी धीरो, जो धीरजवान होता है, कौन धीरजवान होता है? ये धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शिक्षा कौन ग्रहण कर रहा है, अथवा शिक्षा किसके लिए है, कोई कहे तो यहां है विद्वान के लिए शिक्षा है, जो बुद्धिमान है, विद्यावान है, धीर है। ये शब्द भगवत गीता के महात्म में है कि सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल न पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। जो धीर है वो इस गीता के संदेश को समझ सकते हैं। तो ये उद्धव गीता, इसको भी समझने वाले कौन है, किसके लिए उपदेश है? उद्धव जैसे भक्त श्रोमणी को ये उपदेश दिया जा रहा है, जैसे भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा था, तो ये उपदेश उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य को दिया जा रहा है। तो वो बहुत धीर है, धीर उसको कहते हैं जो विचलित न हो कैसी भी परिस्थिति। धीर का शब्द भगवत गीता में कहां आया है? देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। ये शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, बुढ़ापे के बाद शरीर समाप्त होता है। जो धीर पुरुष है शरीर के ऐसे परिवर्तन के ऊपर मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा की अमरता के ऊपर अच्छी तरह से टिकी होती। तो धीर पुरुष जो है वो ये जानता है दैव वश कि ये दूसरे लोग जो कष्ट दे रहे हैं मेरे को, दुख दे रहे हैं, कभी दुख दे रहे हैं और कभी प्रशंसा कर रहे हैं, ये देव वश, ये अपने वश से नहीं कर रहे हैं, इनके कर्मों के, ये कर्मों के वश में है, इनके कर्मों के कारण इनको ऐसे करना पड़ेगा, ये स्वभाव के वश में है और ये स्वभाव प्रकृति से बनता है, और ये अंततो गत्वा तो भगवान के वश में। अब कोई कार्य अगर किया जाता है, भगवत गीता में किसी कार्य के संपन्न करने के लिए पांच कारण है, पंचेति कारणानि, क्या है पांच कारण? शरीर, इंद्रियां, चेष्टा और आखिर में पांचवा है देव, हाँ, या अधिष्ठानम कर्ता उपकरण अधिष्ठा, ये शरीर कर्ता जो इसमें मैं कहता है वो, और कर्ण ये इंद्रियां, और चेष्टा और देवम, और पांचवा देव है। और प्रभुपाद जी के तात में लिखा देव से अंततो गत्वा, इसके पीछे प्रेरणा देने वाला देव हमारे पूर्व कर्मों के कारण वो ही ये काम कराता है। और वो बेचारा अनुगही, वो बेबस होके ऐसे कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, वो तो केवल ही देव के आगे, जैसे जैसे मान लो कि एक बेल रहा, आप कहीं बैठे हुए हैं, बेल ने पीछे आके मार दिया, आपकी बेल से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, बेल ये समझ के तो आपको मारने नहीं आया कि ये फलाना आदमी है इसको मुझे मारना है, या आपको पहचान था या आपकी दुश्मनी थी। उसके स्वभाव ही ऐसा है कोई चीज सामने आ गई तो उसको सींग मारना है। तो उसने जो काम किया वो किया देव से बेबस होकर, अपनी प्रकृति से बेबस होकर। ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का दमन किया तो काली नाग ने प्रार्थना के समय कहा कि भगवान आपने हमको बना दी ही सर्प की योनि है। अब सर्प द्वेषी होता है, और जब सर्प होता ही द्वेषी है तो मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूं भाई? द्वेषी है सर्प, उसका काम ही ईर्ष्या करना है, उसका काम ही काटना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये स्वभाव आपने दिया है, मैं तो कहां से, मैं अपना तो नहीं लाया हूं कहीं से, तो जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसके जो जो कार्य कर रहा है, उसके पीछे देव, देव का मतलब है सुपीरियर अरेंजमेंट, इसका मतलब है उसके अपने बस से नहीं कर रहा है। तो इसलिए धीरजवान जानता है और विद्वान जानता है कि ऐसे बहुत से लोग संसार में हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे, रुकावटें डालेंगे, परेशानियां डालेंगे, फिर भी न चले न मार्गात, न चले न, चले न का मतलब हिलना नहीं चाहिए, पृथ्वी अपनी जगह से हिलती नहीं है, कभी थोड़ा सा ऐसे करवट भी बदलने का थोड़ा प्रयास करती है तो यहां भूकंप आता है, सारा संसार हिल जाता है, वो चलती नहीं है, अचल है प्रकृति का नाम ही, एक तो पृथ्वी का नाम ही अचला है, ये तो भगवान की दो पत्नियों में से एक पत्नी है। दो पत्नियां भगवान की कौन सी है? हरे कृष्ण बेटा, अरे कुछ आवाज आ रहा है? हरी बोल, हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है? लोडिंग गुलाटी स्क्रीन, हरी बोल, आवाज आ रहा है? कोई बोलो भाई, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आवाज आ रहा है, आगे चलें। तो पृथ्वी न चले न मार्गाद, ये मार्ग क्या है? मार्ग से धीर विद्वान को मार्ग से नहीं हटना चाहिए, अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। तो ये मार्ग कौन सा है? मार्ग भगवान श्री कृष्ण से उद्धव आगे 20वें अध्याय में संभवतः पूछता है कि मार्ग कौन सा है। बोला, आवाज आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, चल रहा है? मार्ग की बात कर रहे हैं, यहां लिखा है चले न मार्गात, न चले न मार्गात, मार्ग से विचलित न हो, रास्ता न छोड़े। तो मार्ग कौन सा है? तो मार्ग आप जानते हैं, कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, लेकिन ये सब मार्ग अपनी जगह पे है। लेकिन भगवान ने अपने मुख से उद्धव, भगवान ने उद्धव को अपने मुख से कहा है कि भक्ति का मार्ग उससे विचलित न हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपना साधन कर रहे हैं, भक्ति के रास्ते को हमने अपनाया है, रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएगी, परेशानी आएंगी, जैसे आज ये भाई एक हमको लॉकडाउन है, घर के अंदर से रहना है, बाहर नहीं जा पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो भी अपने साधन में कहीं भी त्रुटि नहीं आने देनी चाहिए, अपना नित्य नेम करना चाहिए, सत्संग है तो कर रहे हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज ऐसा उदाहरण है, जिसके ऊपर और बाहर के तो नहीं, उसके अपने पिता ने कितनी बड़े संकट, कितनी बड़ी परेशानियां, कितने उसके ऊपर आपदाएं आई, लेकिन वो अपने मार्ग से जरा एक इंच बराबर, एक सेंटीमीटर बराबर भी नहीं हिला। तो यहां अभी तक ये कहा गया है, जो प्राणी है वो निश्चित रूप से आपको आज नहीं तो कल, आगे नहीं तो पीछे संकट देते ही रहेंगे। और वैसे हम जानते हैं कि कुछ दूसरे प्राणी संकट देते ही हैं, तो ये संकट वो देते हैं, ये उनके बस में नहीं है। मानो ये मच्छर जो हमको काटता है आकर, ये मच्छर को ये मालूम नहीं है कि मेरे को इसको ही काटना है, कि नाम लेके हमारे पीछे आता है, नहीं, उसका ये स्वभाव है कहीं से भी मेरे को मेरा भोजन निकालना है। और वो इतना होशियार है कि एक मिनट में सुई लगा के हमारे अंदर से खून निकाल के पी लेता है, और हम इतने होशियार हैं कि उसको वो खात देख लिया तो मार देते हैं। तो एक कुआं खोदता है हमारे शरीर के ऊपर मच्छर छोटा सा, और लाल पानी निकाल लेता है। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर कितने लोगों ने खड्डे खोदे हैं, पृथ्वी ने अगर ऐसे करके कहा होता तो किसी को कुछ मिलता क्या? तो यहाँ ऐसे प्राणी, भूत ही का मतलब केवल मानव नहीं, कोई भी प्राणी अपने बेबसी के कारण, वो उसका बस नहीं चलता है, वो स्वतंत्र नहीं है, और वो देव के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कष्ट देता रहता है, किसी को संकट देता रहता है। इसलिए जो विद्वान है उसको अपने मार्ग से हिलना नहीं चाहिए, अपने जो लक्ष्य है उससे विचलित नहीं होना चाहिए। कैसे, कहां से आपने ये सीखा? कोई दुख दे, कोई परेशान करे, कोई धक्का दे, कोई बुराई करे, फिर भी हमको अपने साधन के अंदर पक्का रहना चाहिए, धीरजवान रहना चाहिए, बुद्धिमान और विद्वान होने के कारण अपने काम में लगा रहना चाहिए। कहां से सीखा? तो कहते हैं अनविक्षम मैंने सीखा क्षिति, धरती से सीखा। अब ये धरती को देखो, इसका एक तो धारणा शक्ति है, ये हम सबको धारण करके बैठी है, धरती ने सबको धारण किया हुआ है, और धरती को हमारे शास्त्र ने माता कहा है। ये माता है जिसकी गोद में हम सब बैठे हुए हैं। और दूसरा, यहां धरती से जो गुण सीखा है दत्तात्रेय अवधूत ने, वो है सहनशीलता। कितनी धरती की सहनशीलता है, इसके अंदर कुआं बनाते हैं, तेल निकालते हैं, खड्डे बनाते हैं, खुदाई करते हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होती। वो तो छोड़ो, जितने धरती के ऊपर जीव रहे हैं सब मल मूत्र इस पृथ्वी के ऊपर त्यागते हैं, जो थूक रहे हैं वो पृथ्वी के ऊपर कैसे भी थूक रहे हैं। अब बताइए, कोई आदमी आपके ऊपर थूके, आप उसको सहोगे? मैं सुन रहा था, महाराज जी कह रहे थे कि मैं एक बार अंधकार में, कहीं अंधेरे में, कहीं लघु शंका करने के लिए बैठा पेशाब के लिए, तो पीछे से कुत्ता आया मेरे के ऊपर, पीठ के ऊपर पेशाब कर दिया। अब मैं उसको सहना पड़ गया। कुत्ता थोड़ी जानता है कि मेरे ऊपर, उसको तो ऐसे ही कहीं जाके पेशाब करना था, और उसने देखा नहीं, अंधेरा था, मेरे ऊपर कर दिया। अब मैं कुत्ते के ऊपर क्या क्रोध करूं? तो भाई, कुत्ता तुमको काटता है, क्या तुम कुत्ते को काटोगे? क्या नहीं, क्या क्या कर सकते हो, ये उसका स्वभाव है, भौंकना उसका स्वभाव है, वो जब भूत कर गया, मैं क्या कर सकता हूं, उसका सहना पड़ेगा। एक महात्मा के लिए लिखा है कि वो महात्मा संभवतः महाराष्ट्र के नामदेव जी के लिए है, अथवा कोई नाम नहीं भी लें तो, एक महात्मा पवित्र नदी में स्नान करने के लिए, अगर इस क्षेत्र का है तो फिर जो चंद्रभागा नदी है, और नहीं तो गंगा जमुना में स्नान करने जा रहा था, तो कोई विधर्मी दुष्ट अपने राज के कारण उसके ऊपर ऊपर से थूक दिया, तो महात्मा ने कुछ नहीं किया, महात्मा वापस लौट के नदी में स्नान करने गया। ऐसे उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार कर दिया, 107 बार हो गया, 108 बार तक उसका थूक सूख गया और उसके हृदय पिघल गया, और उतर के वापस नीचे आया, महात्मा के चरणों में गिर के कहता है, महाराज मैंने बहुत बड़ी दुष्टता करी, बड़ा मैं दुष्ट हूं, आप क्षमा करना। महाराज ने उसको कहा, तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार किया है, आज के दिन 100 से 108 बार तक मैंने पवित्र नदी में स्नान किया है, कितना बड़ा पुण्य मैंने आज अर्जित किया है। तो थूकने वाले के ऊपर भी क्रोध नहीं। ऐसे नाव के अंदर एक महात्मा जा रहा था, बेचारा गंजा महात्मा था, बाल तो थे नहीं, और दोपहर को उसको गायत्री मंत्र करना था, और उसने जो बैठे थे उस नाव में, बदमाश कुछ बैठे थे, उसने पूछा, अरे भाई टाइम कितना हुआ है? तो एक बदमाश ने उठा, उसके सर को एक जोर से मारा कि 1 बजा है, ऐसा मारा उसका सर घूम गया। उसने हाथ जोड़ के कहा, भगवान कितने तुम दयालु हो, अगर 1 घंटा पहले पूछा होता और इसने 12 मार दिए होते तो मेरा सर का ये नारियल टूट गया होता। अच्छा है, थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, तो ये जो सहनशीलता है महात्मा की, ये कहां से सीखी? ये धरती से सीखी। कितने बच्चा है, देखो छोटे बच्चे हैं, माँ की गोद में बैठे होते हैं, पेशाब कर देते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं, तो माँ क्या उनको उठा के फेंक देती है? नहीं, फिर भी साफ करके उसको स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहना के फिर उसको प्रेम करती है। तो ये धरती माता कितना हमारा अत्याचार सह रही है, इतने बड़े लड़ाइयां होती हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, ये रत से रंजित हो जाती है धरती। ये धरती बहुत दुखी होती है, ऐसा नहीं है कि ये धरती कोई केवल पत्थर है, नहीं, ये धरती का आदि भौतिक रूप है। आदि देविक रूप में धरती गाय का रूप धारण करती है, उसमें वो सहनशीलता की मूर्ति है। गाय कहते हैं सहनशीलता की मूर्ति को। और धरती को बहुत कष्ट होता है, तब धरती भगवान को प्रार्थना करती है कि इस वक्त बलि महाराज कहते हैं कि शुक्राचार्य जी, ये धरती माता कहती है कि मैं जूठे का भार नहीं उठा सकती हूं, बाकी तो मैं सबका मल मूत्र ये सब सह लेती हूं, लेकिन जो आदमी जूठे हैं, अपने वचन से मुकर जाते हैं, उनका भार मैं नहीं उठा सकती हूं। इसलिए मैंने जो भगवान को वचन दिया है, इस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। तो ये पृथ्वी जब बहुत ज्यादा पाप अत्याचार होता है, तो फिर सब इसके पेट में, हमारा सारा भोजन की सामग्री इस पृथ्वी के पेट में, जो भी हम खा रहे हैं वो सब इस पृथ्वी से उत्पादन होता है। हाँ, सब्जियों से लेकर और अनाज से लेके, और जो पशु खाने वाले हैं, वो सारे पशु इस धरती से उत्पन्न होने वाले घास को खाते हैं। तो सारे प्राणियों का पोषण तो माँ धरती कर रही है। ये चौथे स्कंद भागवत में पृथु महाराज धरती को कहते हैं कि मेरे प्रजा के लिए तुम भोजन क्यों नहीं दे रही हो? और धरती कह रही है क्योंकि आतितायों ने, वेण जैसे दुष्ट राजाओं ने इतना अत्याचार किया कि मैंने सब भोजन की सामग्री छुपा दी है। अब आप धर्मात्मा महाराज पृथु राजा हो, कोई योग्य बछड़ा बनाओ तो मैं सबके लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगी। तो ये पृथ्वी हम सबका, हमारा पालन करती है, हमारे को धारण करती है, और हाँ, और अत्याचार जितने भी धरती के ऊपर है, और विशेष रूप से गाय का खून धरती के ऊपर गिरता है, तो धरती में कभी शांति नहीं हो सकती। गौ हत्या और गौ के रत से रंजित धरती के ऊपर कभी सुख शांति से रहना संभव नहीं है। पूरे विश्व के अंदर ये महामारी के पीछे ये सब सामूहिक कर्म, पशु हत्या विशेष रूप से और भ्रूण हत्या जैसे दुष्ट कार्य जो विश्व के अंदर हो रहे हैं, उसके कारण ऐसे संकट आना हमेशा, शास्त्रों में इसको आदि देविक रूप से पहले ही कहा गया है। तो पृथ्वी सहनशीलता की मूर्ति है, और महाराज यदु को दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं कि मैंने सहनशीलता पृथ्वी के व्यवहार से सीखा। और जो साधु है, भक्त है, मुनि है, विद्वान है, धीरजवान है, उसको संसार में जितने भी रुकावटें आए, जीवन में जितना भी रिवर्स आए, जितना भी जीवन में कष्ट आए, इस वक्त सारा संसार कष्ट भोग रहा है, सारा कारोबार बंद है, ये सब कैसे हो रहा है, इसको क्यों हो रहा है? देव, ये कुदरत का, कुदरत जिसको कहे भौतिक प्रकृति, बहुत बड़ी शक्तिशाली है, उसके कारण बेबस होके सब कर रहे हैं। चाहता कोई नहीं है लेकिन बेबस है, और इसीलिए करना पड़ रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी धीर बन के, विद्वान बन के, सहनशील बन के प्रार्थना में लगा रहे, भगवान की कृपा का आश्रय कभी नहीं छोड़े। निश्चित रूप से भगवान दयालु हैं, कृपा करेंगे। और ये पृथ्वी के तो पति हैं, हम ये कह रहे थे बात जो बीच में रह गई, विष्णु पत्नी पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी अथवा धृता लोका, ये पृथ्वी तुम सारे लोक को धारण करती हो, विष्णु पत्नी, आप विष्णु की पत्नी हो। मैं आसन रख के आपके ऊपर बैठ के भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे आसन को पवित्र करो। ये असल में जब बैठ के भगवान के जप करने के लिए पृथ्वी पे बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो ये पृथ्वी को प्रार्थना का मंत्र है। पृथ्वी त्या धृता लोका विष्णु पत्नी अचासनम पवित्र कुरु, हमारे आसन को पवित्र कुरु, ऐसे करके एक मंत्र है। तो ये भूदेवी जो है अचल है, और दूसरी भगवान विष्णु की पत्नी है श्री देवी, वो लक्ष्मी है, वो चल है और ये अचल है। तो जैसे पृथ्वी का एक नाम ही अचला है, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी दुर्व्यवहार हो, कैसा भी पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हो, लेकिन पृथ्वी कभी भी अपने जगह से हिलती नहीं है। और कभी थोड़ा सा भूकंप प्रकृति के कोप के कारण होता है, पृथ्वी अगर ऐसे हिलना शुरू करे हमारे पापों को देख के, तो सभी एक समय में समाप्त हो सकते हैं और सभी डूब जाएं, पृथ्वी के अंदर समा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी सहनशीलता के साथ सबको धारण कर रही है। इससे साधु को, भक्त को, मुनि को, विद्वान को, धीरजवान को संसार के अंदर संकटों को सहना चाहिए। जिसमें सहने की शक्ति है, जिसमें क्षमा करने की शक्ति है, क्षति क्षमा करती है, और सहनशीलता है, तो सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भजन करने के लिए, हरि का नाम जपने के लिए इस सहिष्णुता को मुख्य रूप से कहा है, सहिष्णुना। और वो जो दूसरे दो चीजें और पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो एक इसके बाद दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी और पृथ्वी के साथ दो और चीजें जुड़ी हुई हैं, उनसे क्या सीखना चाहिए। तो पृथ्वी से हमने क्षमा और सहनशीलता, क्षमा सीखा और सहनशीलता सीखा। वो कभी अपने स्थान से हिलती नहीं है। ऐसे हमारे को हमारे साधन से, हमारे मार्ग से, ये भक्ति का मार्ग जो हमने अपनाया है, भगवत प्रेम की प्राप्ति का जो मार्ग हमने अपनाया है, जो ये कृष्ण भावना अमृत के पथ के ऊपर हम चले हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी संकट आए, कोई भी कितना रुकावट डाले, फिर भी हमारा बलि महाराज की तरफ वचन के ऊपर इतना पक्का होना चाहिए कि उससे कभी नहीं हिलना चाहिए। अब दूसरे श्लोक में पृथ्वी के दो और अंग हैं, उनका वर्णन सुनते हैं। तो इसका लिखा है, अब 38वां श्लोक पढ़ते हैं। शश्वत प्रारत सर्वे शश्वत प्रारत सर्वे परार्थ एकांत संभव साधो शिक्षेत भूभृतो नग शिष्य परात्मता। इसमें पृथ्वी के दो ओर अंग हैं, उनसे क्या शिक्षा लेनी है। पृथ्वी का एक अंग है भूभृत। भूभृत कहते हैं पृथ्वी के ऊपर भारी रूप में पर्वत, ये जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये जो इनको कहते हैं भूभृत। इससे शिक्षा लेनी चाहिए, और शिक्षा लेनी चाहिए नग से। नग नगम का निगम कल्पत्रो जल गलितम, ये कल्प वृक्ष है। निगम, नग का मतलब है वृक्ष, पेड़, ट्रीज। हाँ, तो एक पृथ्वी का दूसरा अंग है पृथ्वी ही, पर्वत के रूप में और वृक्ष के रूप में परिवर्तित होती है। और उससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए, उससे शिक्षा ये लेनी चाहिए क्या, शश्वत सदा के लिए। ये दोनों सदा के लिए क्या करते हैं, सदा के लिए परार्थ। परार्थ का अर्थ क्या है, परमार्थ। दूसरों का भले का काम करती हैं, दूसरों के हित का काम करती हैं। सर्वे हा, सदा के लिए, ये सदा ही अपना जितना सर्व या जो भी इनके पास, ये पहले तो ये कह रहे हैं साधु के लिए, जो ऊपर नाम दो लिए हुए हैं विद्वान और धीर, उनको क्या करना चाहिए, सदा ही परोपकार के कार्य संसार में करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रार्थ एकांत संभव पर अर्थ, पर अर्थ मतलब परमार्थ, दूसरों के भले के लिए। जैसे आज बहुत बड़ा विकट परिस्थिति है, लोग बहुत भूखे पड़े हैं, तो कैसे कोई ऐसे जरूर धर्मात्मा है, अपना ही कृष्ण भावना अमृत संघ लाखों लोगों को प्रसाद का वितरण करने का कार्य कर रहा है, तो इसको कहते हैं पर अर्थ। पर हित, पराहित एकांत, केवल ये केवल ही दूसरों के हित के लिए। मेरा जीवन काय के लिए? बोला दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के परोपकार के कार्य में लगने के लिए है। जितना यही संभव हो, साधु शिक्षित, साधु को सीखना चाहिए। किससे? भूभृत से, पर्वत से। और किससे सीखना चाहिए? पेड़ का शिष्य बनना चाहिए। प्रात्मनः, क्योंकि ये दोनों दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। तो धरती से हमने क्या सीखा? सहनशीलता, क्षमा और सहनशीलता। और पर्वत से परोपकार सीखा, उनका जीवन सारा देने के लिए है। ये इतना सारा सोना चांदी निकलता है, इतने सारे और जो है ये जो धातु निकलते हैं, तांबा है और बड़े से बड़े उत्तम से उत्तम धातु निकलते हैं पर्वतों के अंदर से, पर्वतों के अंदर से पानी के झरने निकलते हैं, मीठे पानी की नदियां निकल के आती हैं, सारी नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं, पर्वतों के ऊपर कितने जीवों के जीने के लिए। अरे पर्वत की तो महिमा गोपियों ने गाई है गिरिराज की, के ये हरिदास वर्य है, भगवान के भक्तों में महान भक्त है। अरे ये क्या करता है, ये भगवान श्री कृष्ण की गायों को सुंदर बहुत स्वादिष्ट नरम नरम कोमल घास देता है, और पानी पीने के लिए झरनों से मीठा पानी देता है, और भगवान के प्रिय भक्तों को गर्मियों में गुफा के अंदर ठंडा ठंडा और वातावरण देता है, और वर्षा में उनकी वर्षा से रक्षा करता है, और फिर पेड़ों के अंदर से सुंदर से फल देता है। कितना बड़ा भगवान के भक्तों की ये सेवा करता है। तो पर्वत कितना परोपकार करता है, सब कुछ अपना दूसरों के लिए है। पर्वत न पानी पीता है, न फल खाता है, न ये सोना चांदी पर्वत पहन के घूमता है। तो जो कुछ पर्वत से निकलता है वो परोपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए निकलता है। ऐसे वृक्ष जो है वो सभी दूसरों को देता रहता है, फल देता है, पत्ते देता है, काटो तो लकड़ी देता है, उसी की छाया में बैठो उसी को काटो। अरे वही तो लकड़ी देता है जो कुल्हाड़े में डालते हैं तब वो कटता है, लेकिन फिर कभी भी अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़ता। तरोर अपि सही क्षणोना चेतना, महाप्रभु ने कहा है सहनशीलता परोपकार है। परोपकार का वर्णन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के संग ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उस समय बलराम जी को संबोधित करके कृष्ण कह रहे हैं, हे पेड़ देखो भाई, बलराम जी ये पेड़ देखो कितने परोपकारी हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, वर्षा में खड़े होते हैं, आंधी तूफान में खड़े होते हैं, गर्मी में खड़े होते हैं, लेकिन परोपकार को कभी नहीं छोड़ते हैं। और फिर कृष्ण श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, ये उन कर्म कांडी ब्राह्मणों से अच्छे हैं जो भूखे को भोजन भी नहीं देते हैं, ये वृक्ष बड़े परोपकारी हैं। वहां भगवान ने दसम स्कंद श्रीमद् भागवत में वृक्षों की परोपकार की और सहनशीलता की अपने श्री मुख से बहुत बड़ी प्रशंसा की है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो वृक्षों से सहनशीलता सीखने का और निम्रता सीखने का, वो घास से निम्रता, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णो न अमानी न मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। अगर सही माना में सदा हरि के नाम का उच्चारण करने का सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है? जिसके अंदर निम्रता है और सहनशीलता है। निम्रता और सहनशीलता एक तरह से देखी जाए तो पृथ्वी से निम्रता और वृक्ष से सहनशीलता, और पर्वत और वृक्ष इतना परोपकार का कार्य करते हैं कि इनका जीवन ही परोपकार के लिए है। आप एक पेड़ को लेके आए नर्सरी में, घर से घर में लगाएं, पानी नहीं दें, कभी चिल्लाता नहीं, कभी कुछ मांगता नहीं है, ये पेड़ हमेशा परोपकार। तो साधु को यहां लिखा है, साधु को, साधु शिक्षेत, साधु को शिक्षा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने इन पर्वतों से और वृक्षों से परोपकार की शिक्षा ली है, सहनशीलता पृथ्वी से और परोपकार, इनका जीवन ही दूसरों के लिए है। तो साधु का जीवन वैसे भी दूसरों के लिए होता है, उनके जीवन में व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं होता है, अपने भोग के लिए उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, उसका जीवन दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। ये महाप्रभु का प्रसिद्ध श्लोक, भारत भूमि ते आइला मनुष्य जन्म जार, मनुष्य सार्थक जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर भारत भूमि में मानव का जन्म मिला है तो बहुत दुर्लभ है, इस जन्म को सार्थक करो। इस सार्थक करने का मतलब ये है पहले ये शिक्षाएं ग्रहण कर लो, गीता भागवत को बड़े धैर्य के साथ सुन लो, और इसको सुनने के बाद समझ लो, समझने के बाद अपने जीवन में इसको सार्थक कर लो, और जब सार्थक हो जाए तो फिर परोपकार का कार्य करके दूसरों को भी ऐसे दूसरों का हित करो। परोपकार, उपकार करना, दूसरों का हित करना, गिरे हुए को उठाना, तो ये बहुत बड़ा मुख्य कार्य साधु के जीवन में होना चाहिए, और इसको अवधूत दत्तात्रेय ने सीखा है वृक्षों से और पर्वतों से। और वृक्ष और पर्वत पृथ्वी का ही दूसरा अंग है, दूसरा रूपांतर है। तो आज तीन शिक्षाएं हमने, पृथ्वी और पृथ्वी के दो और विस्तार पर्वत और वृक्ष से सीखी, और ये साधु धीरजवान विद्वान उसके जीवन में धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, उद्विघन कभी नहीं करे, और परोपकार के कार्य में लगे, अपने जीवन से जो हो सके जीते जी वो उदारता के साथ परोपकार का कार्य करे। और परोपकार का कार्य करने वाले को कभी भी किसी वक्त भी कोई संकट नहीं आएगा, किसी चीज की उसके पास कभी भी अभाव नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी का हृदय को देखिए परोपकार के विषय में, 74 की बात होगी संभवतः, गोवर्धन पूजा के बाद पत्तल फेंके भक्तों ने बाहर, पत्तल के ऊपर थोड़ा बचा हुआ कुछ अन्न पड़ा था या प्रसाद पड़ा था, उसके ऊपर एक तरफ कुत्ते छीना झपटी कर रहे थे, एक तरफ कुछ बंगाल के गरीब बच्चे मायापुर में कुत्तों को भगा के खाने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने देखा, उनके आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने अपने सारे वरिष्ठ जो भक्त थे उनको बुला के कहा, सुनो हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के अंदर कोई भूखा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रसाद को सारे मंदिर के चारों ओर विस्तार से वितरित करो। भगवान लक्ष्मीपति है, किसी चीज की कमी नहीं होगी, और ये प्रसाद वितरण का कार्य प्रभुपाद की यहाँ ये प्रेरणा। और एक बार प्रभुपाद जी 77 के कुंभ मेले में प्रयागराज में थे, स्थान अच्छा नहीं मिला हुआ था, और स्नान के दिन प्रसाद वितरण के लिए भोजन की सामग्री नहीं थी, तो एक 1.5 घंटे तक प्रभुपाद जी ने, जो वहाँ उस वक्त भागवत संभवत इंचार्ज था इसका और कुछ और थे, उनको कहा कि हमारा उद्देश्य यहाँ आकर लोगों को प्रसाद वितरण करने का है, भोजन वितरण करना है, हरिनाम वितरण करना है, पुस्तक वितरण करने हैं, यही अमृत है, नाम अमृत को वितरण करना है यहाँ। और वहाँ से गए प्रभुपाद के दिमाग के ऊपर यही पर उपकार की भावना ऐसी थी कि वो कलकत्ते में उतरे तो तमाल कृष्ण महाराज उनके उस वक्त में सेक्रेटरी थे, उनको कहा सारे मंदिरों को चिट्ठी लिखो कि हमारे मंदिर में आने वाला कोई भी भूखा नहीं जाएगा, हमेशा 25-50 लोगों का प्रसाद मंदिर में तैयार हो, और प्रसाद क्या पूरा विश्लेषण लिखा के पूरी हो, पकोड़ा हो, हलवा हो, खीर हो, सब्जी हो, दाल हो, और इस तरीके से 25 आदमियों का भोजन पूरा हो जाए तो दूसरा भोजन तैयार करना चाहिए। कोई भी दर्शन के लिए आया भाग्यशाली भूखा नहीं जाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ने लिखा तुम कभी चिंता मत करना कि तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव होगा, क्योंकि मंदिर की स्वामिनी राधा रानी रसोई घर की स्वामिनी है और राधा रानी को लाखों लक्ष्मियों का सहयोग और सहायता है, इसलिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम उदारता के साथ इस परोपकार के कार्य को, इस प्रसाद वितरण के कार्य को, आने वाले भाग्यशाली को भोजन खिलाना है और मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं जाए। तो ये परोपकार का दृष्टिकोण, ये भागवत पढ़ने के बाद जीवन में ऐसे भाव आने चाहिए कि हमको ये सेवा का कार्य कैसे करना चाहिए, कितनी हमारे अंदर उदारता और परोपकार करने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं और हमारे मार्ग से विचलित कभी ना हो। जो भक्ति का मार्ग अपने अपनाया इसके ऊपर चलते रहें, धरती की तरह अचल रहें, हिले नहीं। पर्वत और वृक्ष में केवल एक अंतर है, पर्वत को हम हिला नहीं सकते हैं, जहां है वहीं से सबको सप्लाई करेगा, वहीं से सबको जो उनके पास है वो दे देगा, लेकिन वृक्ष तो ऐसा है इसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, काट के लकड़ी ले जा सकते हैं, पर्वत को ऐसे उठा नहीं सकते हैं, लेकिन वृक्ष तो और भी सुलभ सब सेवा करता है। और हम जो कुछ भी खा रहे हैं ये वृक्ष के छोटे रूप से, ये अनाज खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, ये सब भी वनस्पति वृक्षों से तो आया है। तो ये सब परोपकार का कार्य कर रहे हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ नहीं आज तक मांगा है। ये धरती इससे ज्यादा कोई दुनिया में देने वाला नहीं है, एक दाना डालो 3 महीने में 1000 दाने ले लो, इतना कौन रिटर्न दुनिया में देता है, कोई बिजनेस देता है, कोई बैंक देती है, ये धरती है इतनी उपकार से देती है और सबको धारण करती है। तो धारण वाली शक्ति इस धरती और सहनशीलता और क्षमावान इस धरती ये माता है, इससे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और इसी के दो पुत्र के रूप में समझ लीजिए पेड़ और पर्वत हैं, जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं, दूसरों के हित का कार्य कर रहे हैं और सर्वदा सर्वदा जीवन से लेके अंतिम घड़ी तक यही कार्य करते हैं, और कोई उनका कार्य है ही नहीं, उनके पास व्यक्तिगत उनके जीवन का कोई लक्ष्य कोई कार्य नहीं है सवाय परोपकार के। तो ये 3 शिक्षाएं आज हमने पृथ्वी, पर्वत और पेड़ से सीखी, कल इसके बाद वायु से क्या सीखना चाहिए, पृथ्वी और फिर जो दूसरा शब्द है वायु से क्या सीखेंगे, फिर इन सब बहुत सी इसके ऊपर चर्चा और कर सकते हैं समान के जो समाज को देख कर, लेकिन 24 तत्वों को आस्ते आस्ते करना है, कुछ समय लगेगा। तो यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, किसी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी
प्रभु जी, एक क्वेश्चन कल के से कॉन्टेक्स्ट में था।
हाँ हाँ जी, हाँ जी,
जो आपने बताया था एक शायद 17वां श्लोक, उसके पर्पट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं,
कौन से श्लोक के
जी के बारे में, कि
कौन से श्लोक में
17
में, हाँ क्या लिखा
17?
है 17। हाँ हाँ जी,
प्रभुपाद जी ने लिखा उद्धव इज अ प्योर डिवोटी, वो सारा उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऐसे करके लिखा हुआ है परपट में।
हाँ 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 जी, शाह
एंड इज डिटरमाइंड,
हाँ हाँ, सत्य सिते स्वदृढ़ आत्मना आत्मनो अन्यम वक्तारम ईश विभस अपि मा जे सर्वे मोहिता धियास्तव मानिमान ब्रह्मादेश। हाँ, आपके अलावा इसका इस सारे श्लोक का जो तात्पर्य तो ये था कि भगवान मैं आपका ही शरण लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े देवता ये कार्य नहीं कर सकते, यही ना। हाँ यही है। हाँ हाँ जी हाँ जी
उसके प्रपट में
हाँ प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा ये प्रपट लिखा हुआ है। हाँ जी क्या लिखा है
उसमें प्रपट में दिया हुआ है कि उद्धव इज अ प्योर डिवोटी एंड डिटरमिन्ड टू गो बैक टू गॉड।
हाँ हाँ
और उसके नेक्स्ट श्लोक में
नेक्स्ट श्लोक में
जो श्लोक है
इसके बाद वाला श्लोक
उसमें उसके 18वें श्लोक में ही उद्धव जी बोल रहे हैं विघ्न धीर अहम हुए।
हाँ हाँ तस्माद भवंतम अनवद्यम अनंत पारम। आप अनंत पार है आपसे मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। हाँ आप अनकुंठ है वैकुंठ। हाँ अनवर हाँ अनिर्वण धी अहम तू ते
निर्विण।
हाँ अनिर्वण धी निर्विण धी है
ये जो वर्ड है निर्विण मैं ये देख रहा था
निर्वाण निर्वाण से निकला हुआ जब निर्विण निर्विण में आपने क्या कह रहे हैं निर्वण निर्वण निर्वाण से निकला है। निर्वाण का मतलब मोक्ष। वैसे निर्वाण की परिभाषा बाण का मतलब है तीर लगना और निर का मतलब नहीं लगना मतलब संसार के दुख से मुक्त होना। निर्विण धी माने मुक्त माने त्याग का रास्ता वैराग का रास्ता मुक्ति का रास्ता। निर्वाण की परिभाषा तो ये है लिखा है यहाँ लिखा है फीलिंग रिनाउंस। हाँ उसके बाद क्या है
उसमें ट्रांसलेशन में दिया हुआ है कि इट इज फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिस्गस्ट।
वो उसके बाद इसके निर्वण धी के निर्वण धी के बाद अहम तो ही वृजन अभी तपत मैं जो है आपने मुझे कहा क्योंकि भगवान ने कहा तुम अब सन्यासी बन के यहां विचरण करो तो उद्धव कहता है आप कहते हैं कि मैं ये करूं आप में सब ये गुण है लेकिन मेरी स्थिति ये है कि ये जो भौतिक कष्ट है वृजन वृजन अभी तपत ये जो तपत है इससे मेरे को जो भौतिक परेशानियों से मुझे जो कष्ट हो रहा है नारायणम हे नारायण आप नर के सखाओ आप मेरे को। तो ये असल में उद्धव का भाव है कि आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो आप जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं संन्यास लेकर त्याग के साथ विचरण करूं निश्चय बेसहारे होकर तो ये भौतिक संसार के संकट मुझे कितना कष्ट देंगे इसका मेरे दिमाग के ऊपर बहुत भार है। तो आप नारायण है आप भक्तों के सखा है आप मुझे उपदेश दीजिए। तो यही असल में तो अवधूत से यही उपदेश दिलाया जा रहा है कि संसार में कितने भी संकट आए फिर भी आप क्या उद्धव असल में शुद्ध भक्त है उद्धव का माध्यम बनाकर भगवान शिक्षा हमको दे रहे हैं। तो उद्धव को कोई ऐसा नहीं है कि उद्धव को कोई चिंता है भौतिक जगत की लेकिन उद्धव निमित्त मात्र हमारे शिक्षा के लिए है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हर वक्त हरे कृष्ण जपते हुए भी कहते दुर्दैव महाजनम मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान के नाम लेने में मेरे को मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ इसे उद्धव का ये कारण नहीं समझना चाहिए। यहाँ लिखा है इसलिए हे स्वामी मैं भौतिक जीवन से बहुत दुखी और परेशान हूं और मैं आपका शरण लेता हूं। इससे दूसरा ये भी ध्वनित हो रहा है कि शरणा जब गुरु के शरण में जाए तो अपनी स्थिति को हमेशा ऐसे ही जो उसका सार्थकता भौतिक जगत में जो सच सत्य है उसको बोलना चाहिए। तो ये उद्धव भगवान को प्रार्थना कर रहा है शिक्षा के लिए। तो इसमें उद्धव को कोई शुद्ध भक्त भगवत धाम जाना चाहता है लेकिन भौतिक जगत में जब है तो ये तो अभी शिक्षा लेनी है इसलिए अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत उद्धव कर रहा है हमको शिक्षा देने के लिए कि हमको निश्चित रूप से गुरुजनों के चरण में जाकर संसार के दुख की अनुभूति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि वाकई मैं संसार के अंदर बहुत संकट सह रहा हूँ बहुत दुखी हूँ बहुत परेशान हूँ। कौन दुखी नहीं है इस संसार में। ये संसार में शरीर मिला है तो इसके साथ आदि व्याधि संसार मन का चिंताएं, शरीर का रोग, ये तो साथ में लग जुड़ा ही हुआ है ना। तो इसलिए ये गुरुजनों के सामने जाके कहना जरूर कि इन शरीरों के संकट से हमको मुक्त कराइए, हमारे को भगवान की भक्ति दीजिए। तो ये उनकी अपनी एक निम्रता और अपना जिसको कहा जाए, इसको कहते हैं दैन्य बोधि का प्रार्थना। ये जो भगवान को प्रार्थना कर रहा है दैन्य, अपने दीनता, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। तो ये जो भाव है ये शुद्ध भक्त की पहचान का भाव है। पतित, मैं पतित हूँ, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित न प्रभु पाएगा आर। भगवान आप पतितों के उद्धार के लाए और मेरे जैसा कोई पतित आपको मिलेगा नहीं, पहला नंबर मेरा आएगा। ये असल में बहुत उत्तम भक्त की जो है वो पहचान है, जो अपने आप को बहुत निम्र कह समझता है। भक्ति विनोद ठाकुर भजन में कहते हैं अहम कुकर, मैं कुत्ते की तरह हूं, मैं ऐसा, तो ऐसे मैं विष्टा के कीड़े के समान हूं, जैसे नरोत्तम दास जी लिखते हैं। तो ये असल में शुद्ध भक्त की निम्रता की पहचान है। तो उद्धव जी इस कोटि का भक्त है जो ऐसे निम्रता से भगवान को प्रार्थना कर रहा है। और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, धन्यवाद। हरि बोल। हे विष्णु जोशी की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये तो सरल और सीधा सा प्रश्न था, इसमें कुछ मेरे ख्याल में पूछने जैसा है नहीं।